بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. جی، آج کی مجلس کا نمبر لکھنا بھول گیا، مجلس نمبر 52 ہے. اور غصہ اور اس کا علاج، غصہ اور اس کا علاج. غصہ ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے. تو یہ انفاس عیسیٰ جو ہے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں رذائل کا بیان چل رہا ہے، یعنی برائیوں. اس میں سے گزشتہ جو گیا ہے اس کا نام تھا کبر، یہ عجب اور اس کا علاج. ایک ہوتا ہے عجب، ہوتا ہے کبر، ایک ہوتا ہے تکبر، اور ایک ہوتا ہے استکبار اور اس کا علاج. آج غصہ اور اس کا علاج ہے. یہاں غصے کا بیان شروع ہے. غصہ بھی رذائل میں سے ہے، بلکہ بعض حضرات صوفیاء نے فرمایا کہ ام الامراض ہے. یہ ام الامراض ہے، یعنی یہ غصہ خود تو بیماری ہے، اور نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا کرتا ہے. غصہ ایک خود ایک بیماری، اور نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اس لیے وہ ماں بن گئی، غصہ بیماریوں کی ماں. اس غصے کے نتیجے میں بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، یعنی ہو جاتے ہیں. مثلا غصے میں بے قابو ہو کر گالی گلوچ شروع کر دی، نامناسب الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیا، غصہ اور آگے بڑھا تو مار پیٹائی شروع کر دی، اور اس میں حد سے آگے بڑھ گیا. تو یہ دیکھو کتنا سارا کام ہوا غصے کی وجہ سے. اور پھر انسان دوسرے پر اس وقت غصہ کرتا ہے، دوسرے پر اس وقت غصہ کرتا ہے جب اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے. غصہ کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے. عجب ہوگا، کبر ہوگا، تو غصہ بھی آئے گا. کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے، چھوٹا سمجھے، تو اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. سامنے والے سے چھوٹا سمجھے گا، کبھی غصہ نہیں آئے گا. سامنے والے سے بڑا سمجھے گا تو ہی غصہ آئے گا. اس لیے اس غصے کے ساتھ کبر اور عجب بھی جمع ہو جاتے ہیں. غصے کے اندر عجب اور کبر بھی جمع ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ بغض بھی جمع ہو جاتا ہے. تو غصے سے عجب کی بیماری، کبر کی بیماری، بغض کی بیماری، لہذا بے شمار باطنی امراض اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں. جی، اس وجہ سے حضرات صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی شخص علاج کے لیے جاتا تھا تو وہ سب سے پہلے اس غصے کا علاج کیا کرتے تھے. تو بہت سے لوگ جو سننے والے ہیں، ان کو بھی یہ غصے کی بیماری بڑی پریشان کر رہی ہوگی، تو وہ بھی ان باتوں کو سنیں اور اپنے غصے کا علاج کریں. تو فرمایا علاج کے لیے جاتا تھا تو وہ سب سے پہلے اس غصے کا علاج کیا کرتے تھے. انسان کی جبلت میں، یعنی انسان کی فطرت میں، جبلت یعنی فطرت میں دو بنیادی چیزیں ہیں، دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک غصہ اور دوسرا شہوت. اس لیے ہمارے نقشبندی سلسلے کے اندر جو ہم نے دیے ہیں مراقبہ، اس مراقبے میں پہلا ہی سبق شہوت کا علاج ہے اور دوسرا سبق غصے کا علاج ہے. جی، اور دو چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، ایک غصہ اور دوسرا شہوت. چاہے وہ شہوت بطن کی ہو، यानी पेट की हो यानी खाने पीने में, और या फर्ज की हो यानी शर्मगाह की हो। अगर गौर करोगे तो ये नजर आएगा कि सारे गुनाहों, सारी मासियतों, सारे गुनाहों की जड़ यही दो चीजें हैं। अगर गौर करेंगे तो सारे गुनाहों की जड़ यही दो चीजें। इसी वजह से हजरत सूफिया किराम सबसे पहले गुस्से का इलाज करते थे। गुस्से का इलाज करते, क्योंकि अगर गुस्सा काबू में न होगा तो वो न जाने कितने गुनाहों में, कितनी जलालत के घड़ों में जाकर गिरेगा, गुमराही में जाकर गिरेगा, अगर गुस्सा काबू में न रहा तो। तो याद रखे, दो चीजें इंसान की फितरत में हैं, गुस्सा और शहवत। और जिन्होंने इन दो लतीफों पर मुराकबा किया है उनको इस बात का पता भी चल गया होगा कि उनको कितना फर्क पड़ा। शहवत यानी शौक, क्योंकि शहवत भी, शहवत एक तो शहवत पेट की होती, खाने पीने का शौक, एक शहवत यानी कपड़ों की होती है, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग, एक बदनजरी की होती है। तो ये सब के सब शहवत में आ जाते हैं, शौक के अंदर आ जाता है। तो अब ये वाज़ाहिर बात ये गुना है, क्योंकि इंसान जब शौक पूरा करेगा तो जाहिर बात है फजूल खर्च करेगा। एक होती है जरूरत और एक होता है शौक। जरूरत, एक मकान मिल गया जरूरत पूरी होगी। शौक क्या है? मकान की डिजाइन ऐसी हो, मकान में कट्टन ऐसे हो, सोफा ऐसा हो, रंग ऐसा हो, मैचिंग ऐसी हो, ये सब क्या है? ये सब शहवत है, ये सब शहवत है। निकाह करना है तो निकाह गुनाहों से बचना है, तो एक खानदानी शराफत नेक लड़की या मर्द मिल गया, लड़का मिल गया, ये हो गया। लेकिन अब उसके अंदर भी कहा माल ऐसा हो, उसकी डिग्री ऐसी हो, उसका वो ऐसा हो, तो ये सारी शहवत है। गुनाहों से बचने के लिए ये चीजें हैं। तो ये ऐसे हर चीज में एक शहवत है। अब ये जब इस बात पर मुराकबा करते हैं लतीफे कल्ब पर, तो फिर क्या हो, ये चीजें नॉर्मल हो जाती है, जरूरत के दर्जे में रहती है। इंसान कई गुनाहों से बच जाता है और उसका माल भी बचता है, उसका वक्त भी बचता है। क्योंकि आज हमारा वक्त शहवतों में पूरा होता है, शौक में पूरा होता है, बातों का शौक होता है, घूमने का शौक होता है, हमारा वक्त इसमें पूरा हो जाता है, और माल भी शहवतों में पूरा हो जाता है। का ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, ये ऐसी मैचिंग, उसमें पूरा हो गया। तब तो माल और वक्त जब चला गया तो अब दिन पर क्या चलेंगे? जब उसी के अंदर कंट्रोल हो गया तो मुराकबा, लतीफे कल्ब पर मुराकबा करने से ये बहुत बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, इंसान का शौक खत्म हो जाता है। और दूसरा, मुराकबा जो लतीफे रूह है उस पर करने से गुस्से की बीमारी गारंटेड दूर होती। अब क्या मतलब, गुस्सा नहीं आएंगे? नहीं, गुस्सा तो आता है, लेकिन पहले कंट्रोल नहीं होता था, अब कंट्रोल करने की ताकत पैदा हो जाती। तो जिन्होंने इन दो पर मशक की है वो खुद समझ रहे हैं कि हमें क्या फायदा हुआ, और दूसरों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो उन लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई तुम्हें क्या फायदा हुआ। बहुत गारंटेड इलाज है, ये इलाज है, इलाज हुआ, और एक दिन में नहीं होता है, ये महीनों लगते हैं, बरसों लगते हैं, उसके बाद इलाज होता है। तो फरमाया, मुख्तसर नसीहत, एक सहाबी ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इज औ जज, नसीहत फरमाए और मुख्तसर फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप मुझे नसीहत करो, लेकिन नसीहत कैसी हो? मुख्तसर। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बुरा नहीं मनाया कि नसीहत भी तलब कर रहे हो और ऊपर से शर्तें भी लगाते हो। हालांकि किससे? दुनिया के सबसे बड़े इंसान, अल्लाह के बाद सबसे बड़े जो नबी है, और उनसे कह रहे हैं नसीहत करो लेकिन मुख्तसर करो, तो कितनी बड़ी बेअदबी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम किसके सामने बोल रहे हो। तो ये है कि बड़ा इंसान हमेशा छोटों की गलतियों को बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए हमेशा घर में शौहर बड़ा होता है तो वो वो बीवी की गलतियों को, बच्चों की गलतियों को बर्दाश्त कर लेता है। ये बड़े होने की अलामत है। बड़े होने की अलामत ये नहीं है कि गुस्सा निकालना, डांटना, सबको डरा के रखना, ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े हैं, लेकिन एक आदमी क्या कह रहा है, तो आप बुरा भी नहीं मान रहे। तो ये है कि बड़ा होने का मतलब ये हो कि उसके अंदर ताकत बर्दाश्त की भी बड़ी होती है, नहीं है तो उसकी मशक करनी चाहिए। तो फरमाया बुरा नहीं मना है कि नसीहत भी तलब कर रहे हो और ऊपर से शर्तें भी लगाते हो। इससे मालूम हुआ कि अगर नसीहत तलब करने वाला ये कह दे कि मुझे मुख्तसर नसीहत फरमा दीजिए, तो उसमें नाराजगी की कोई बात नहीं, बल्कि उसका हक है, बल्कि ये उसका हक है। क्योंकि अगर उसने आपसे नसीहत तलब की और उसके पास वक्त कम था, अब आपने उसके सामने 2.5 घंटे की तकरीर कर दी, 2.5 घंटे की तकरीर कर दी, कि बाजों की बोलने की आदत होती है तो वो देखते नहीं है कि सामने वाले के पास कितना टाइम है, बस बोलते जा रहे हैं। तो फरमाया उसके सामने तकरीर, हालांकि उसको सफर में जाना था या कहीं और जाना था, वो जल्दी में था। उसका नतीजा ही हुआ कि वो बेचारा नसीहत तलब करने के नतीजे में मुसीबत में मुबतला हो गया, मुसीबत में मुबतला हो गया। जी हाँ, मैं एक मरतबा मस्जिद में बैठा हुआ था, मेरे पास एक साथी आया, बोले मैं कल जमात में जा रहा हूं, मुझे कुछ नसीहत करो। तो मैंने सबसे पहले उसको पूछा, तुम्हारे पास कितना टाइम है, कितना टाइम है? तो उसने कहा मेरे पास 5 मिनट जी। जी 1 मिनट। तो उसने कहा मेरे पास 5 मिनट टाइम। मैंने कहा 5 मिनट में क्या नसीहत करूं? तो खैर मैंने तो फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ, अल्लाह ताला अगर बुलाना चाहे तो 5 मिनट में भी काम की बात करा देता है। तो देखो नसीहत हो, मुख्तसर हो। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे को 5 मिनट में नसीहत कर देता हूँ, क्योंकि उसके पास वक्त 5 मिनट का। वो वैसे ही वहीं गुजर रहा था, मेरी मुलाकात हो गई, कहा मैं कल जमात में जा रहा हूँ, मुझे नसीहत करो। तो मैंने उसको नसीहत, 5 मिनट में उसके पास टाइम था, मैंने 2 मिनट में नसीहत कर दी। मैंने उसे पूछा कि तुम अमीर हो या मामूर हो? तो कहा उसका पता नहीं, वो तो मशवरे में जाकर पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर अमीर हो तो नबी अलैहि सलातो सलाम की तरह चलना, और अगर मामूर हो तो सहाबा की तरह चलना, जाओ। ये 1 मिनट की नसीहत हो गई, वो हैरान हो गया। मैंने कहा हो गया इसके अंदर, मैंने कहा घंटों की तकरीर आ गई। अब बोला बोले बोले नबी की तरह चलना, सहाबा की तरह चलना, मुझे समझ में नहीं आया, उसकी तफसील करो। तो फिर 3 मिनट जो बाकी थी, 4 मिनट, उसमें उसकी थोड़ी सी तफसील करो, 5 मिनट में उसको छोड़ दिया। तो देखो अब ये आसान काम नहीं, अल्लाह ही तौफीक देता है, मेरा कोई कमाल नहीं। तो वो आज तक वो याद रखता है, बोले मुझे पूरे 40 दिन के अंदर तुम्हारी वो नसीहत याद रही, और मैंने दूसरों को भी बताया कि मौलाना ने मुझे ऐसी नसीहत की थी। अब उसको खोलो, घंटों निकल जाएंगे। तो बस अल्लाह ताला ने दिल में, मैंने कभी इस बात को सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली और उसको 1 मिनट में बात बता दी। तो इसलिए हमेशा, तो देखो यहां आया कि शर्त लगा दी कि नसीहत करो और मुख्तसर हो। इसलिए हमेशा कोई आदमी आए तो उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास वक्त कितना है, दावत देना है तो उसके बाद 5 मिनट, तो 5 मिनट मस्जिद में जाओ, कहा कि भाई बात कर लो थोड़ी सी, तो पूछो कितनी देर, कहा 10 मिनट, तो 10 मिनट से 11 मिनट में मत लो, ये दीन है। हमें तो क्या सुनने वाले बहुत अच्छा है, किस्सा अच्छा चल रहा है, बात चलो पूरी करते हैं, 5 मिनट और ले लेते हैं। फरमाया ये बेदीनी है, वक्त पर काम को खत्म करना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया अगर नसीहत तलब करने वाला ये कह दे कि मुझे मुख्तसर नसीहत फरमा दीजिए, तो उसमें नाराजगी की कोई बात नहीं, बल्कि उसका हक है। क्योंकि अगर उसने आपसे नसीहत तलब की, उसके पास वक्त कम था, तो अब आपने उसके सामने 2.5 घंटे की तकरीर कर दी, हालांकि उसको सफर में जाना था, वो जल्दी में था। उसका नतीजा हुआ बेचारा नसीहत तलब करने के नतीजे मुसीबत में मुबतला हो गया। और जब उसके दिमाग पर जल्दी जाने का बोझ होगा, तो वो क्या आपकी नसीहत सुनेगा? अब जल्दी जाने का दिमाग में बोझ होगा तो क्या नसीहत सुनेगा? हालांकि मैंने उसको जो नसीहत की थी 1 मिनट में, अब वो 1 मिनट की ऐसी नसीहत थी कि वो अगर 1 घंटा भी बिठा देता तो बैठ जाता था, क्योंकि अब उसके दिमाग उसका पूरा गुम गया। बोले ये क्या मतलब? तो उसका दिमाग ऐसा घुमा कि वो 5 मिनट लेने आया था लेकिन 5 घंटे भी दे देता था। मैंने नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये था कि इंसान को अंदर से इतना शौक जाग जाए कि वो खुद कहे कि अच्छा आप उसको भी समझाओ, ये भी समझाओ। तो फरमाया आपकी नसीहत सुनेगा तो क्या सुनेगा, अगर उसके दिमाग पर तो जाने का बोझ होगा, और क्या उस पर अमल करेगा। इसलिए बात करने वाले को चाहिए कि मुखातब के हाल का लिहाज करे, कि जिसके सामने तुम बात कर रहे हो उसका लिहाज करो। और उस हदीस में तो खुद मुखातब ने कह दिया कि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मुझे मुख्तसर नसीहत फरमा दीजिए। अब देखो मुख्तसर नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को क्या की, अल्लाह अकबर, अजीब। चुनाचे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर नसीहत फरमाई कि ला तगज़िब, गुस्सा मत करना। लो देखो कितनी मुख्तसर नसीहत, अजीब, यानी शायद चंद सेकंड लगे, गुस्सा मत करना, ये मुख्तसर नसीहत फरमाती। इससे पता चला कि गुस्सा ही दर हकीकत बहुत सी बुराइयों का सर चश्मा है, यानी बुनियाद है, जड़ है, बहुत सी बुराइयों का जड़ है। तो आपने फरमाया गुस्सा मत करना, यानी हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबकी तबीयतों को जानते थे, इसलिए फरमाया दाई दाई वो होता है कि जो हर एक के मिजाज को भी जाने, हर एक की तबीयत को भी जाने। तो क्या है, जब वो नसीहत के लिए आएगा तो वो उसको उसके मुताबिक नसीहत करेगा। अगर वो दाई जानता ही नहीं है तो क्या बोलेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अलग अलग सहाबा आए हैं और अलग अलग सहाबा को अलग अलग नसीहत की है। तो ये नसीहत क्यों, कि उनके अंदर वो तबीयत जानते थे, तो किसी को गुस्से की, किसी को माँ बाप की खिदमत की, किसी को अल्लाह के रास्ते में जाने की, तो हर एक को अलग अलग नसीहत करते थे, जिसके अंदर जिसकी कमी होती थी उसको करते। तो ये है कि दाई वो हो तो जो हम अंदर से जान रहे हो कि क्या है। तो जब तब जब तुम तुम्हारे सामने जो आया है तुम उसकी तबीयत को नहीं जानते तो उनके सामने क्या बात करोगे। इसलिए पहले तो बात यही करनी है, कभी भी आप लोग भी दाई हो तो हमेशा अल्लाह की बड़ाई बयान करो, नबी की सीरत बयान करो और उस पर चलने के फायदे बताओ, अगर कुछ नहीं जानते तो। और अगर किसी के बारे में मालूम हो तो फिर उसकी जो कमी है वो भी एक कह देना चाहिए। जैसे इसको फरमा ला तकजीब, गुस्से मत करना। इससे पता चला कि गुस्सा ही दर हकीकत बहुत सी बुराइयों का सर चश्मा है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बुराइयों और बदामाली और सारी मासियतों में से इसका इंतखाब फरमाया। हालांकि आप चाहते तो ये फरमा सकते थे कि देखो झूठ मत बोलना, गीबत न करना, जीना न करना, चोरी न करना, वगैरह वगैरह, लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। इससे मालूम हुआ कि ये कोई बहुत बड़ी बुराई है। इससे पता चला ये कोई बहुत बड़ी बुराई और ये सब गुनाहों का बाप है, जिसके नतीजे में इंसान और बहुत से गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता है। जी अच्छा, ये गुस्सा ऐसी चीज है कि जरूरी भी है, ये गुस्सा ऐसी चीज है कि बाद अवकात उसकी जरूरत होती है। अगर ये गुस्सा बिल्कुल ना हो तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। जरूरत भी है, इसीलिए पिछले दरसों में ये बात आ गई कि इसका इमाला करना है। यानी वो सिफत तो खत्म नहीं होती, सिफत को दूसरी जगह मुंतकिल करो। जो जो गुनाहों की तरफ जा रहा है तो उसको नेकियों की तरफ डालो। तो फरमाया अगर ये गुस्सा बिल्कुल ना हो तो इंसान जिंदा ही नहीं रह। मसलन कोई दुश्मन या कोई दरिंदा आपके ऊपर हमला आवर हो गया, अब अगर उस वक्त आपको गुस्सा ना आए बल्कि पड़े रहे और मार खाते रहे तो उसका नतीजा होगा कि आप ही खत्म हो जाएंगे। उस पर एक किस्सा भी गुजिश्ता गया था, बड़ा अजीब किस्सा है, एक साहिब बहादुर का किस्सा। हमारे वालिद साहब एक किस्सा सुनाया करते थे, एक साहब बहादुर बहादुर थे, किसी बड़े ओहदे पर थे, उनका नाम ही था बहादुर, और किसी बड़ी पोस्ट पर थे, हर काम नौकर से कराने के आदी थे, खुद कोई काम नहीं करते थे। एक दिन सुबह बेदार हुए यानी जागे तो देखा कि अंदर बंदर आ गए। क्या हुआ, चला गया। जी तो एक साहब बहादुर का किस्सा, हमारे वाली साहब एक किस्सा सुनाया करते थे कि एक साहब बहादुर थे, किसी बड़े ओहदे पर थे, हर काम नौकर से कराने के आदी थे, खुद कोई काम नहीं करते थे। एक दिन सुबह बेदार हुए, जागे तो देखा कि घर के अंदर बंदर आ गए। घर के अंदर क्या आ गए भाई? बंदर आ गए। एक बंदर उनका सूट उठा कर ले गया और एक बंदर उनकी पैंट उठा कर ले गया और एक बंदर उनका हेट उठा कर ले गया। अब साहब बहादुर बिस्तर पर पड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। साहब बहादुर बिस्तर पर पड़े ये सब तमाशा देख रहे थे और आवाजें दे रहे थे, अरे भाई कोई मर्द है जो इन बंदरों को रोके? कोई मर्द है कोई बंदरों को रोके? कोई मर्द है जो इन बंदरों को रोके? इतने में उनका कोई दोस्त आ गया, उसने आकर कहा कि जनाब आप भी तो मर्द है। मर्द वे साहब बहादुर ने कहा कि हाँ भाई, खूब याद दिलाया। चुनाचे जल्दी से बिस्तर से उठे और बंदरों के पीछे दौड़े। फिर जल्दी से उठे और बंदरों के पीछे दौड़े। इतनी देर में तो बंदर सब चीजें लेकर जंगल की तरफ भाग चुके थे। लिहाजा ये तर्ज अमल के बिस्तर पर लेटे हैं और अपनी मुदाफात दिफा नहीं कर रहे हैं, ये सूरत भी इंसान की फितरत के खिलाफ है। जी जी तो ये देखो, उसको कहते हैं गुस्सा ही नहीं आ रहा है और फिर पूछ रहा है भाई कोई है इनको हटावे। अजीब, सुस्ती का भी तो एक बहुत बड़ा वो हो गया ना कि इतनी बड़ी सुस्ती, बल्कि इंसान की फितरत का तकाजा है कि जब उस पर कोई हमला आवर हो तो अपनी मुदाफात करे और उस पर गुस्सा करे। जी गुस्सा करना इबादत भी है, याद रखो। आप अजीब कहोगे कि अरे गुस्सा तो इतनी बड़ी बीमारी है और इबादत भी है, लेकिन समझो बात को। लिहाजा गुस्सा हर जगह बुरा नहीं होता, बल्कि बाज जगह पर सही और बरहक होता है, बल्कि इबादत होता है। मसलन अगर कोई शख्स हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, नऊज़ु बिल्ला, उस वक्त अगर मुसलमान को गुस्सा ना आए तो उससे ज्यादा बेगैरती और क्या होगी। इस मौका पर गुस्सा करना ही इबादत है, लिहाजा बहुत से मौके ऐसे हैं जहां पर गुस्सा का इस्तेमाल दुरुस्त होता है, बल्कि बेहतर होता है, बल्कि वाजिब भी होता है, और बहुत से मौके ऐसे हैं जहां पर गुस्सा का इस्तेमाल बुरा है बल्कि गुनाह है। जी गुनाह है, लेकिन हम सब कौन है? हम सब सालिक है, रास्ता चल रहे हैं, अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता हमने पकड़ा है, उसको सालिक कहते हैं। जितने दर्स सुन रहे हैं ये सब के सब सालिक हैं। लेकिन जब कोई मुरीद अपनी तरबियत कराने के लिए किसी से ताल्लुक कायम करता है तो शेख उस मुरीद से कहता है तो वो सालिक होता है, तो तुम फिलहाल गुस्सा बिल्कुल मत करना। उसको तो इब्तिदान रोक दिया जाता है, क्यों? कि तुम उसमें तमीज नहीं कर सकोगे, फर्क नहीं कर सकोगे कि कहां गुस्सा करना हक है और कहां ना हक है। लिहाजा अभी तो तुम ये मश्क करो कि किसी भी मौका पर गुस्सा मत करो, समझे? अगर तरबियत चाहते हो तो किसी भी मौका पर गुस्सा मत करो, उसी का नाम मुजाहदा है। मुजाहदे में ये सारी बातें गई है, पहले मुजाहदा की जो मजलिस थी उसमें बातें गई है, यानी किसी किसी से बचने के लिए सद्दे जरिया के तौर पर किसी मबाह चीज को भी तर्क कर दिया जाता है, यानी किसी खतरे वाली किसी हराम चीज से बचने के लिए किसी मबाह चीज को भी तर्क कर दिया, यानी जायज चीज को भी छोड़ दिया जाता है, यही मुजाहदा है। मुजाहदा की तारीफ में ये सारी बातें आई थी, अगर मुजाहदे के मजलिस की बातों को सुनोगे तो ये सब चीजें वापस मिलेंगी। हजरत मौलाना याकूब साहब नानुती रहमतुल्लाह अलैह मुजाहदा को एक मिसाल से समझाते हैं कि एक कागज को एक तरफ मोड़ दो, ये मिसाल भी थी, फिर उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो सीधा नहीं होगा। जी सीधा नहीं होगा, उसके सीधा करने का तरीका यह है कि उसको मुखालिफ सिमत की तरफ मोड़ दो। जब उसको मुखालिफ अपोजिट सिमत में की तरफ मोड़ दोगे तो ये कागज सीधा हो जाएगा, इसलिए उसको बिल्कुल रोक दो तो फिर वो सीधा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी इस तरफ मुड़ा हुआ है ना गुनाहों की तरफ, तो अब उसको उल्टा मोड़ना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, तो उल्टा मोड़ दिया तो सीधा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह हमारा नफ्स भी गुनाहों की तरफ मुड़ गया है, अगर उसको सीधा करने की कोशिश करते तो सीधा नहीं होता, लिहाजा इस नफ्स को दूसरी तरफ मोड़ दो, यानी उससे कुछ जायज काम भी छुड़ा दो। जायज कामों के छुड़ाने के नतीजे में वो नफ्स एतेदाल पर आ जाएगा, उसी का नाम मुजाहदा है, उसी का नाम मुजाहदा है। इसलिए हजरत सूफिया किराम फरमाते हैं कि इब्तिदाअन तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत करो, उसका नतीजा ये होगा कि वो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ जाएगा। इसके बाद जब गुस्सा को इस्तेमाल करोगे तो सही जगह पर इस्तेमाल होगा, तो इसलिए गुस्सा आवे तो इस्तेमाल मत करो, बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, चाहे अपने से छोटा है तो, क्योंकि हमेशा गुस्सा आएगा तो छोटों पर ही आएगा, अपने से बड़ों पर नहीं आएगा। देखो किसी को गुस्सा पुलिस वालों पर नहीं आएगा, क्यों, चाहे कितना ही बड़ा हो तो समझता है कि मेरे से बड़ा है, तो फौरन ठंडा हो जाएगा। और हमेशा शौहर को गुस्सा बीवी पर ज्यादा आएगा, क्या मेरे नीचे है, छोटी है, तो गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा चाहे कैसा भी हो, अपने से छोटे पर भी आएगा तो फिर उसको इस्तेमाल मत करो, काबू में कर लो, कंट्रोल कर लो, तो फिर वो ऑटोमेटिक एतेदाल हो जाएगा, गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा। बहरहाल इसी गुस्से के बारे में और उसको कम करने के लिए हजरत वाला ने कुछ तदबीरें बयान फरमाई है, उसकी थोड़ी सी तशरी अर्ज कर देता। अब गुस्सा, ये तो गुस्से के बारे में बात बताई कि गुस्सा कितनी बीमारियां पैदा करता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को नसीहत की किसके बारे में गुस्सा मत करना, और इंसान की फितरत भी है कि उसके अंदर गुस्सा और शहवत दो चीजें हैं, ये सारी चीजें गुस्से के बारे में थी। अब गुस्से का इलाज क्या है उसको समझो। गुस्से का पहला इलाज अपने अयूब को सोचना। हाँ, क्या है, अपने ऐब को सोचो, और वाकईतन इंसान अपना ऐब सोचेगा खुदा पाक की कसम कभी गुस्सा नहीं आए। आज इंसान दूसरे का ऐब देखता है तो गुस्सा अपने अंदर आ जाता है, अपने अंदर किबर आ जाता है और गुस्सा हो जाता है, काबू से बाहर हो जाता है, कभी कभी हाथ उठा लेता है। चुनांचे हजरत वाला ने गुस्से का पहला इलाज यह बयान फरमाया, बतकल्लुफ जब्त करके अपने अयूब सोचने लगा कीजिए, यानी अपने ऐब को सोचो कि मैं कौन हूं, मुझे उस पर गुस्सा तो आया है लेकिन आखिर मैं भी तो कुछ बिगड़ा हुआ इंसान हूं, मैंने क्या क्या गलत काम किए हैं, मैंने कितने अल्लाह की मासियत की है, नाफरमानियां की है, इंशा अल्लाह ताला फिर उससे गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस वक्त में गुस्सा इतना होता है कि उतनी ताकत भी नहीं होती कि मैं अपने आप को देखूं, तो मुराकबे के जरिए से वो ताकत आ जाएगी, मुराकबा करो। मैं बार बार इसको कह रहा हूं सुनने वाले, और जो खुसूसन बैत है वो अपने मुराकबा को बढ़ाए, कुछ कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा हो रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहे या जो कम कर रहे लेकिन अभी तक वो शुकूक में है, वो अपने मुराकबा को बढ़ाए, उसके जरिए से क्या होगा कि गुस्से के अंदर इतनी ताकत आएगी कि इंसान अपने आप को सोचेगा, छोटों पर हमेशा कभी भी वो गुस्सा निकालेगा नहीं। किसी साहब ने हजरत वाला को खत में लिखा था कि मेरे अंदर इश्तियाल बहुत पैदा होता है, यानी मेरे अंदर गुस्सा बहुत आता है, मुझे तो आज तक किसी ने कोई खत नहीं लिखा या कोई मैसेज में कहा मेरे अंदर बहुत गुस्सा है उसका इलाज कीजिए, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं लिखेगा। हाँ, नमाज के अंदर ध्यान नहीं आता उसका तो लिखते हैं, छोटी छोटी बातों का। ये लिखा करो हमेशा कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है। आज तक किसी ने अपनी बीमारी नहीं बताई। हाँ, इल्ला माशाल्लाह कुछ है जो अपनी बीमारियां बताते रहते हैं। तो हमेशा जितनी बीमारियां बताओगे इतनी बीमारियां दूर हो जाएगी, जितनी बीमारियां बताओगे इतनी दूर हो जाएगी। बहुत से लोग जल्दी से अपनी बीमारी बता देते, उनका इलाज जल्दी हो जाता है, और बहुत से लोग अपनी बीमारी बताने में बरस लगा देते हैं, ताल्लुक रखते हैं, दर्द सुनते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, सब कुछ, लेकिन बीमारी नहीं बताते। तो फरमाया जरा सी बात पर, तो फरमाया मेरे अंदर बहुत गुस्सा आता है और जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, उसका इलाज का बताओ। तो हजरत वाला ने ये तजवीज फरमाया क्या कि जब गुस्सा आ रहा हो और किसी बात पर इश्तियाल हो रहा हो यानी भड़क रहे हो, तो उस वक्त गुस्से को बतकल्लुफ जब्त करके, गुस्से को बतकल्लुफ यानी जानकर उसको जब्त करके अपने अयूब सोचा करो, अपने ऐब सोचा करो। अरे अपनी जिंदगी को देखो कि मैंने क्या किया, कि मैं कितना गुनहगार हूं, कि मेरी नजर काबू में नहीं रहती और मेरे मेरे मेरी जबान काबू में नहीं रहती, मैंने अल्लाह के कितने हुक्मों को तोड़ा है। तो अपने आप को सोचोगे फौरन ठंडे हो जाओगे जी, क्योंकि गुस्सा थोड़ी सी नेकी पर आ जाता है। मैं इतना अच्छा हूं, तुमने गलती कर ली, फौरन गुस्सा आ जाएगा। और जब अपना ऐब को देखोगे तो यार उसकी गलती छोटी है, मेरा ऐब उससे ज्यादा बड़ा है, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये भी बात पहले हुई है मुजाहदे के नतीजे के अंदर, मुजाहदे के जो दर्स हुए हैं उसके अंदर ये सारी बातें आ चुकी है, उसको दोबारा फिर पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए। तो फरमाया क्योंकि गुस्से के अंदर थोड़ा सा उज्ब यानी अपने आप को दूसरे से बेहतर समझने का पहलू होता है, थोड़ा सा उज्ब होता है, वो दूसरे को हकीर समझता है, इसी वजह से गुस्सा करता है। लिहाजा उसका इलाज ये फरमाया कि अपने अयूब को सोचे कि मेरे अंदर क्या क्या अयूब है, और ये सोचे कि इस वक्त जो गुस्सा आ रहा है ये भी उन्हीं अयूब का एक फर्द है। कहा ये भी मेरे अंदर कि ये गुस्सा आ रहा है वो मेरे ऐब है। हाँ, तो अपने अंदर कोई ना कोई ऐब ढूंढो कि मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मेरा बोलना ठीक नहीं है, मेरे को बोलने का ढंग भी नहीं आता है, मैं कितना बुरा हूं, और मेरी निगाह काबू में नहीं है, और मेरी नमाज भी ठीक नहीं है माशाल्लाह। तो अपने ऐप देखोगे तो सामने वाले की अच्छाइयां सोचो, अगर अपने ऐप समझ में ना आवे तो सामने वाले की अच्छाइयां देखो, ओहो माशाल्लाह इबाद, तो हमें फिर गुस्सा नहीं आएगा। दोनों इलाज है, या तो अपना ऐप देखो या सामने वाले के अच्छाइयां देखो कि उसने नाफरमानी एक की है लेकिन फरमा बरदारियां 10 की है। तो 10 को जब सोचोगे, 9 को और एक नाफरमानी हुई तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बेचारे ने एक ही तो ना की। इसलिए इसलिए शुक्र अदा कब होगा, जब नाशुक्री उस वक्त होती है जब इंसान की एक चीज चली जाती है तो नाशुक्री होती है, लेकिन वो एक चीज गई है लेकिन कितनी बाकी है उसको देखो तो शुक्र अदा हो जाएगा जी। तो इसी तरीके से गुस्से को निकालने के लिए सामने वाले की अच्छाइयां देखो कि सामने वाले ने आज मेरे मिजाज के खिलाफ काम किया, एक दिन खाली किया, एक दिन में भी एक वक्त में किया है, बाकी पूरा महीना तो मिजाज के मुताबिक काम किया, तो फौरन गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि हाँ बात तो सही है, पूरा महीना के एक दिन में एक ही मिनट में खाली उसने नाफरमानी, उम्मीद पर गुस्सा होगा इतना। जी तो ये है, या तो फिर अपना ऐप देखो या सामने वाले की अच्छाइयां देखो। वाकईतन अल्लाह ताला हमें उस वक्त में इतनी अकल भी बाकी रहे कि जिससे हम सोच सके, अल्लाह हमें भी अता फरमाए कंट्रोल करने का। अगर मैं दुरुस्त होता, क्या ऐप देखो कि अगर मैं दुरुस्त होता तो मुझे इतनी शिद्दत से गुस्सा ना आता। इस तरह अपने अयूब सोचने से गुस्सा और इश्तियाल कम हो जाएगा, अलबत्ता उसके लिए फिक्र की जरूरत होती है, क्योंकि जिस शख्स को फिक्र ही नहीं कि कितना गुस्सा आया, जिस शख्स को ये कौन करेगा, जिसको अपने गुस्से का गुस्सा याद होता है वो कहता भी है कि मेरे से ये हो गया वो हो गया मुझे निकालना है। तो जिसको अपनी फिक्र होती है ये कितना गुस्सा आया और गुस्से के नतीजे में मेरी जबान से क्या बात निकल गई, क्या मुझसे काम हो गया। तो ऐसा मरज तो नाकाबिले इलाज है, जिसको यही पता नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि मुझे कितना गुस्सा आया, मेरी जबान से क्या अल्फाज निकले, मेरे से क्या नुकसान हुआ। तो ये तो किसी को फिर उसको ये तो फिर ये ऐसी बीमारी है कि नाकाबिले इलाज, जिसको फिक्र ही नहीं। बहरहाल तो गुस्से का इलाज का पहला तरीका यह है कि अपने अंदर फिक्र पैदा करो, क्या अपने अंदर फिक्र पैदा करो। अब जितने भी बात सुन रहे हैं वो उनके अंदर ये बीमारी है, तो पहले अपनी बीमारी को पहचाने, पहचानने के बाद एक फिक्र पैदा होगी कि मुझे बीमारी निकालनी है। वरना बहुत सारे हैं कि पहले बीमारी को ही नहीं पहचाना और क्या क्या गलतियां हो जाती है, कितने नुकसानात हो जाते हैं, लेकिन चल रहे हो तो फिर नाकाबिले इलाज हो जाता है। तो पहले अंदर अपने अंदर पहला तरीका क्या है गुस्से का, कि पहले अपने अंदर फिक्र पैदा करो कि हाँ ये बीमारी है और उसे ये नुकसान हो रहा है और इस तरीके से हमारी मोहब्बतों में दरारें आ रही है, नुकसान हो रहा है और हम इस तरीके से हो रहे हैं। तो जो कुछ भी हो उससे मेरा माल में नुकसान हो रहा है, मेरे उसमें नुकसान हो रहा है। तो अपने अंदर फिक्र पर, जब इंसान के अंदर फिक्र पैदा हो जाती है तो उसके बाद इलाज बताए जाते हैं। उसके बाद जो इलाज बताए जाते हैं फिर वो काम कारगर होते, यानी वो फिर काम करते। इसलिए हजरत फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए तो अपने उयूब को सोच लो तो इंशाल्लाह गुस्सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा, करना है इलाज। तो अब गुस्से का इलाज, तो पहला इलाज क्या बताया कि बतकल्लुफ जब्त करके अपने उयूब को सोचने लगे, समझे, ये है पहला इलाज। दूसरा इलाज हजरत वाला ने फरमाया कि जिस पर गुस्सा आए उसके पास से फौरन खुद हट जाए या उसको अपने पास से हटा दे जैसा मौका। दूसरा इलाज क्या है? फौरन खुद हट जाओ या उसको हटा दो। पहला इलाज जब्त करो, अय्यूब को सोचो। दूसरा इलाज जिस पर गुस्सा आया उसको उससे हट जाओ या खुद उसको हटा दो। गुस्से की खासियत यह है कि जिस पर गुस्सा आता है उसी के करीब जाने की फिक्र करता है, उससे गुस्से के अंदर और तरक्की होती है। इसलिए हजरत फरमा रहे हैं कि जिस पर गुस्सा आए उसके पास से फौरन या तो खुद हट जाओ या उसको सामने से हटा दो, क्योंकि सामने होने की वजह से गुस्सा ज्यादा आएगा, सामने होने की वजह से गुस्सा ज्यादा आएगा। ये होता है, खुद हट जाओ या, लेकिन उस वक्त में भी इतनी अक्ल कहाँ होती है कि न खुद हटे न उसको हटावे, इतना होश लाना, ये भी इलाज की जरूरत है। इसलिए कहा हम बहुत सीरियस मरीज हो गए, बहुत आगे निकल गए हैं कि पहले तो इलाज इस बात का करे कि जिसके वजह से हमारे अंदर इतनी भी अकल हो कि हम उस वक्त हटने की कोशिश करें। और ये इलाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये इलाज खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। चुनांचे हजरत वाहशी रजी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने गजवे उहद के मौका पर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया था, बाद में अल्लाह ताला ने हजरत वाहशी रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम लाने की तौफीक दे दी। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम मेरे सामने मत बैठा करो। देखो क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने आने से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का गम ताजा हो जाता है, उसके नतीजे में गुस्सा आने का अंदेशा होता है। जाहिर बात है वो गम बहुत अजीब था, अब तुम इस्लाम कबूल कर लिया तो जाहिर बात है। तो फरमाया बस तुम सामने मत आया करो। इसलिए हजरत वाला ने फरमाया कि जिस पर गुस्सा आ रहा है उसको अपने सामने से हटा दो, उसको कहो कि तुम दूर रहो, पीछे बैठो, सामने न बैठो, वरना फिर गुस्सा आ जाएगा। ये होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम सामने आओगे तो पूरी हिस्ट्री याद आ जाती है कि ओहो। तो जाहिर बात है अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर अगर गुस्से हो जाए तो फिर तो उसकी तो बर्बादी हो जाती है। तो आपने उसको फरमाया कि अभी जो वैशी है अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है, तो फिर मैं कौन होता? इस्लाम की तौफीक हो गई तो अल्लाह ने माफ ही तो कर दिया ना। वरना अल्लाह अगर पकड़ करता तो इस्लाम की तौफीक ही न देते। तो कितने बड़े बड़े पापी कि अल्लाह ताला ने उनको, इसलिए किसी को ये मत समझो कि वो बड़ा गुनहगार है। अल्लाह किस वक्त में किसको क्या तोबा की तौफीक दे दे हमें उसका पता नहीं है। इसलिए लोगों के गुनाहों को देखकर उन पर गुस्सा मत करो, बल्कि उन पर तरस खाओ, रहम खाओ और मोहब्बत करो और उनको समझाओ। हाँ, आज उम्मत को तो डांटने वाले बहुत है, फतवा देते थे, तू तो जहन्नमी है, तेरी तो मगफिरत नहीं होगी, तूने हराम कर दिया। अरे इसका नहीं है, उस पर तरस खाना है, तरस उस पर रहम खाना है और उसको मोहब्बत करना है, उसको समझाना है। हाँ, गुस्से के वक्त सजा मत दो। ओहो, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। चलो एक एक ही पेज है, चलो पूरा कर देता हूं। गुस्से के वक्त सजा मत दो। इसी तरह अगर अपने से छोटे पर जायज गुस्सा भी आ रहा हो, मसलन अपने औलाद पर या अपने शागिर्दों पर गुस्सा आ रहा हो या बीवी पर, तो उस इश्तियाल की हालत में न उसको डांटो और न उसको सजा दो। न डांटो न सजा दो। क्यों? कि अभी तुम भड़के हुए के वक्त, इश्तियाल के वक्त हुदूद पर कायम नहीं रहोगे, हुदूद पर कायम नहीं रहोगे। इसलिए इश्तियाल के वक्त यानी गुस्से के ज्यादा भड़कने के वक्त मामला को टला दो और थोड़ा सा वक्त गुजार दो, यहां तक कि वो गुस्सा ठंडा पड़ जाए, और गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद उसको अपने पास बुलाओ और उस वक्त उसकी गलती बताओ। उस वक्त अगर डांटने की जरूरत हो तो डांट भी दो। उस वक्त की डांट चुके वो गुस्से की हालत में नहीं होगी, इसलिए वो हद के अंदर रहेगी और गुस्से के वक्त हद से आगे बढ़ने का अंदेशा रहता है। अच्छा, गुस्से का तीसरा इलाज, तो पहला इलाज क्या था? अपने अयूब को सोचे। दूसरा इलाज क्या था? खुद उससे हट जावे, उसको हटा दे। तीसरा इलाज हजरत तौला ने फरमाया, इस्तेजार अजाब इलाही का करे, अल्लाह ताला के अजाब का इस्तेजार करे, यानी अल्लाह जल्ले शानु के अजाब का इस्तेजार करे। इलाज इलाज भी हदीस शरीफ में है। हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम को डांट रहे थे, तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको इस हालत में देखा तो फरमाया, अल्लाह ताला ज्यादा कुदरत रखता है, यानी जितनी कुदरत तुम्हें इस गुलाम पर हासिल है, अल्लाह ताला को तुम पर उससे ज्यादा कुदरत हासिल है। ये अजाब इलाही को, तुम इस गुलाम को तो सजा दे रहे हो, अगर अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देने पर आ जाए तो तुम्हारा क्या बनेगा? अल्लाह ताला के अजाब के इस्तेजार से गुस्से में कुछ कमी वाकई होती है और गुस्सा ठंडा पड़ता है। आगे हजरत वाला ने फरमाया कि अपने गुनाहों को याद करके इस्तिगफार की कसरत करने लगे। ये इसी पहले इलाज का हिस्सा है जो ऊपर बयान फरमाया कि अपने अयूब को सोचा करे और इस्तिगफार करे। बहरहाल बहरहाल हजरत ने इस मलफूज में गुस्से के तीन इलाज फरमाए, बयान फरमाए। अगर कोई शख्स गुस्से के वक्त इन पर अमल करे तो इंशाल्लाह वो गुस्सा उसके लिए मुजिर नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।